आज जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो है लाइब्रेरी एंड इन्फ्लुएंस साइंस और हम बात करेंगे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में। आपको बता दें कि विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई हमारी एक्सपर्ट मिस मंजू चंगू जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू। नमस्कार लर्नर्स। पिछली बार जो हमने पढ़ा है लाइब्रेरी का मेन जो एम है बेसिकली सर्विसेज हैं, सर्विस इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है लाइब्रेरी को। इसमें जब तक आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं तब तक इसका कोई मतलब फायदा नहीं है, मायने नहीं है देखा जाए इन शॉर्ट लाइब्रेरी का। तो पिछली बार हमने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज फॉर यूजर्स पढ़ा था, उसमें हमने आपको काफी सारी चीजें समझाई कि इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इन सर्विसेज की, कितनी तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें हमने आपको एसेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया कि कौन सी बहुत जरूरी होती है, डिजायरेबल सर्विसेज कौन सी हम डिजायर करके हमें जो सर्विसेज जो हम मांगते हैं तो वो वाली हमें सर्विसेज लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। और हमने इसमें ये भी बात की, हमने बताया कि एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी सर्विसेज देती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज और पब्लिक लाइब्रेरीज अलग अलग तरह से। एक छोटा सा एंड पे है आपके उस चैप्टर 12 के एंड में, उसमें हमने सभी सर्विसेज के बारे में अलग अलग से बताया आपको। तो इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और अलग अलग सर्विसेज जैसे स्कूल कॉलेज और ये सब तो एकेडमिक में आ जाते हैं, फिर स्पेशल लाइब्रेरीज आपको पता ही है अलग होती हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज टोटली अलग होती हैं जो सारे पब्लिक को कैटर करती हैं, कोई एज का मायने नहीं है वहां पर। तो इस तरह से हमने आपको इन सर्विसेज के बारे में बताया। आज हम लेसन 13 पे आ गए हैं, वो है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज। जैसे कि हमें बताया कि आज का चैप्टर हमारा ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज, इसमें हम रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। रिस्पॉन्सिव मतलब जिसमें आप हमसे पूछेंगे मैं रिस्पॉन्स करूंगी, आपने कोई भी सवाल किया मैं रिस्पॉन्स में आपने ईमेल किया, व्हाट्सअप करा, मैसेज किया, जो भी मर्जी किया और मैंने उसका रिस्पॉन्स देके आपको रिप्लाई कर दिया। और एंटिसिपेटरी वो जो मैं खुद सोच सकती हूँ कि मेरी लाइब्रेरी में इस तरह की हो सकता है मांगा जाए, इस तरह की ज्यादातर स्पेशल लाइब्रेरीज इस काम को करती हैं कि उन्हें एंटिसिपेशन पहले से ही रखना पड़ता है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दे एंटिसिपेटेड, दे ट्राई टू वर्क ऑन इट बिफोर हैंड। पूछने से पहले जब आप तैयारी करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट तैयार रहता है उन सब सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए। तो आज का हमारा लेसन जो है, ये सब जो हम आपसे यहाँ पर पीसीपी में जब बात करते हैं हम रेडियो पे, ये आपके पास जो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल है एनआईएस की वेबसाइट पे, वहां पर भी मिलते हैं आपको। वहां पर आपको वीडियो प्रोग्राम्स भी मिलते हैं और ऑडियो भी वहां पर रहता है हर चैप्टर के साथ। तो जब भी आपका दिल हो कि पढ़ना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू, वहां से आप सुन सकते हैं उस रेडियो प्रोग्राम को। बहुत सारे चैप्टर्स अभी नहीं हुए अपलोड पर काफी सारे हैं भी उसमें लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए। तो आज हम अब बात करेंगे हम कि लाइब्रेरीज जो भी हैं कितनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसके पीछे उनका लक्ष्य ये है कि इजी एक्सेस हो, आप आराम से वहां तक पहुंचे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अवेलेबिलिटी कैसी है और जो टूल्स हमने लाइब्रेरी को यूज करने के लिए बनाए हैं, चाहे वो ओपैक यूज कर रहे हैं, वेब ओपैक यूज कर रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल मैनुअल कैटलॉग यूज कर रहे हैं, ये सब टूल्स हैं, या हमने कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, बहुत सारी चीज, शेल्फ लिस्ट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो टूल्स हैं इन्हें आप कैसे यूज करते हैं, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उन रिसोर्सेस को यूज करने का आसान तरीका क्या है ताकि आपका भी समय बचे, यही हमने इस लेसन में और 12 लेसन में जो इससे पहले का लेसन था वहां पर हमने इन्हीं सब बात के बारे में बात भी की है कि सर्विसेज में। अब जो लेसन 13 है ट्रेडिशनल एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, किस बेस पे हमने इस लेसन को तैयार किया है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है रोल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी सर्विस में ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज का क्या रोल है, वो क्या कैसे देती हैं। ट्रेडिशनली जो लाइब्रेरी चल, ट्रेडिशनल मींस मैक्सिमम लाइब्रेरी जो है, 80% लाइब्रेरीज ऐसी ही हैं, सभी स्पेशल लाइब्रेरीज नहीं होती हैं। फिर हम कैटेगराइज करेंगे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज को, रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी, जो इस चैप्टर का नाम है। हम लिस्ट आउट भी करेंगे रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे, नीड और फंक्शंस की बात करेंगे रिस्पॉन्सिव में क्या क्या है, और हम एंटिसिपेटरी सर्विसेज का रोल भी बताएंगे क्या है विथ एग्जाम्पल्स दोनों में, रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी दोनों की क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज करते हैं। हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज में क्या कहा जाता है, हमारा मेन एम है, हमारा जो यूजर है, जो फाइनल कस्टमर है, जो भी आप उसे बुलाएं, उसकी सेटिस्फेक्शन, फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन देना उसका बहुत जरूरी है। वो तो हर जगह पे ही है, पर लाइब्रेरी बीइंग अ सर्विस इंस्टीट्यूशन इज नोन एज रेफरेंस इंफॉर्मेशन सर्विस। These are considered the most essential and important of all activities of the library. In order to organize and operate these services effectively and efficiently to the fullest satisfaction of the users, they are broadly distinguished into two categories, that is responsive and anticipatory. Traditional library services mein जहां तक हमारा ये है कि satisfaction, fullest satisfaction मिले हमारे user को, end user को, उसी के लिए हमने इन सर्विसेज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ। रिस्पॉन्सिव, पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन शॉर्ट में क्या होता है रिस्पॉन्सिव, आपने मुझसे जिस तरह से बोला मैं उसका रिस्पॉन्स दे रही हूं। Responsive services are offered in response to the request from the user for making use of library tools and facilities or help users in obtaining answers to any reference questions. These requests may come from users in person, telephone, through correspondence, via email or on internet. The technology now allows users to submit their requests to the library in any form, staying in any part of the world. These services are listed like assistance in the use of library tools, जो मैं पहले से ही बता रही थी, main important चीज़ है हमारे जो library tools हैं, उन्हें हम use कैसे कर सकते हैं, उसमें असिस्टेंस, लेंडिंग सर्विसेज और सर्कुलेशन सर्विसेज, ये सारी ट्रेडिशनल में ही आती है। इंटर लाइब्रेरी लोन है, फिर रेफरेंस सर्विसेज हैं, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी होती है और एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस भी होती है। शॉर्ट में आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, और लॉन्ग में आई नीड टू वर्क ऑन इट, क्वेश्चन ऐसा होगा थोड़ा लंबा होगा जिसपे मुझे काम करना पड़ेगा और जिसकी मुझे रिस्पॉन्स बनानी पड़ेगी, रिप्लाई बनानी पड़ेगी, फिर आप तक पहुंचना होगा। लिटरेचर सर्च, आपको पता है कोई भी जो भी रिसर्च वर्क करते हैं उन्हें लिटरेचर सर्च की जरूरत होती है। जो भी कोई काम करना है, बुक लिखना चाहते हैं या कोई पेपर लिखना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक लिटरेचर सर्च की जरूरत पड़ती है कि ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। तो ये भी हम लाइब्रेरीज उन्हें हेल्प कर देते हैं इस काम को करने में। फिर कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज, इस सब्जेक्ट पे हमें कौन कौन से ऑथर टाइटल मिल रहे हैं, उन्हें हम कंपाइल करते हैं, अल्फाबेटिकली लगा लेते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। फिर फोटोकॉपी सर्विसेज भी हैं, हर लाइब्रेरी में एक फोटोकॉपियर डेफिनेटली होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ताकि आपकी जो बुक है अननेसेसरीली लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको 2, 4, 10 पेजेस तक फोटोकॉपी करना है वो आप जरूर कर सकते हैं वहां से। फिर रेफरल सर्विसेज है, ये वो सर्विसेज है जिसमें मैं आपको रेफर करती हूँ किसी और जगह पे। जैसे मुझे पता है ये वाली चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास नहीं है, ये किसी और लाइब्रेरी में है और मेरे आसपास में इस जगह पे मिलेगा, हो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल रेफर यू देयर, दैट इज रेफरल सर्विसेज। देन ट्रांसलेशन सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विसेज भी इन्हीं सर्विसेज का एक पार्ट है, क्योंकि अगर किसी और लैंग्वेज में आपके पास डॉक्यूमेंट है पर आप उसे किसी और लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा अच्छा डॉक्यूमेंट समझ लीजिए फ्रेंच में बना हुआ है और पर हमें आपको इंग्लिश में चाहिए या आपको हिंदी में चाहिए, तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स की ट्रांसलेशन सर्विसेज भी रखते हैं लाइब्रेरीज। यूजुअली सभी का नहीं हो पाता है, बट वी ट्राई टू मेक अ डेटाबेस जिससे हमें ये पता चल जाता है कहाँ से ये ट्रांसलेट होके आ सकता है। तो ये भी एक सर्विस है जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं, बड़ी लाइब्रेरीज हैं, वहां पर ये डेफिनेटली आपको ये सर्विस मिलती है। तो ये हम रिस्पॉन्सिव सर्विसेज की बात करेंगे। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्पॉन्सिव सर्विसेज, यही जो मैं आपको बताती रही हूं कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में रिस्पॉन्सिव सर्विसेज सारी ही हैं, जो ये सारी सर्विसेज जो हमने बताई आपको कि ऑन रिक्वेस्ट, थ्रू फोन, वीडियो, ये सब जब आप करेंगे मुझे तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव सर्विस करूं। लिस्ट आउट द डिफरेंट रिस्पॉन्सिव सर्विसेज। तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिव सर्विसेज में यही आएंगे, लेंडिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, रिस्पॉन्सिव रेफरेंस सर्विस हो गया, रेफरल सर्विस हो गया, लिटरेचर सर्च या फोटो कॉपी हो गया, ये सब आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लिस्ट आउट द डिफरेंट रेफरेंस सर्विसेज। तो इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस किसे कहते हैं हम? दिस रेफरेंस सर्विस इज जनरली प्रोवाइडेड टू अ स्पेशलिस्ट हु इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च, फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर और राइटिंग अ पेपर और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन सॉट मे बी टू स्पेशलाइज्ड इन नेचर, इट मे बी टू रिसेंट, इट मे बी रिटेनिंग टू अनदर पीरियड, It can be in another language also. Depending upon the query, the information may be searched in several sources, including printing as well as electronic resources. At times, organizational or reference sources are also consulted to provide this desired information. तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस मेनली किसके लिए होती है? एक स्पेशलाइज पर्सन के लिए हो सकती है। अगर कोई लेक्चर देना चाहता है, कोई टॉपिक होगा और या कोई पेपर लिख रहा है या कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हमें अगर कोई क्वेरी आती है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में, उसमें हम लोग काफी सारी चीजें जो कंसल्ट करते हैं। और एक कभी कभी ये भी होता है हमें 2010 से 15 तक के बीच का चाहिए, तो वो एक पीरियड भी बता देते हैं कि इस पीरियड का काम चाहिए हमें। इस तरह से क्वेरी को समझना है ठीक से और सारे रिसोर्सेज को यूज करना है, उस तरह से हम इसको बना के कंपाइल करके हम इसमें से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें से हम इनफैक्ट जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्वेश्चन है तो एनुअल रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, वहां के प्रोस्पेक्ट्स यूज कर सकते हैं, या जो भी हमसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा। हम अगर कोई एनआईएस पे ही टॉक देना चाहता, बताना चाहता है एनआईएस क्या है, कैसा है, वो कैसे कैसे ये इन्फॉर्मेशन ले लेगा? वो क्या करेगा, हमारे वेबसाइट को चेक करेगा, पहले वेबसाइट पे देखेगा कि क्या है, हमारे कितने डिपार्टमेंट्स है, क्या 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 कौन डिपार्टमेंट क्या काम करता है, फिर एनुअल रिपोर्ट चेक कर लेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स में हमें पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करा है, क्या अचीवमेंट्स रही है हमारे, क्या प्रोजेक्ट्स रहे हैं हमारे। तो इस तरह से लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज का काम इन सब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी होता है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस क्वेश्चंस डिमांड नॉट ओनली मोर टाइम टू फाइंड द आंसर्स बट ऑल्सो नीड टू कंसल्ट रिसोर्सेज विच मे बी और मे नॉट बी स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इनमें टाइम बहुत लगता है, कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं आपको मिलेगा कि डिक्शनरी में से अगर जो आंसर निकाल के देना आपको एनसाइक्लोपीडिया से निकाल के देना है वो शॉर्ट रेंज में हो जाता है, वो अपने फटाफट सुना। इसमें यू नीड टू टेक टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि आप जब भी कोई भी सोर्स को चेक कर रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। Handle such long range and at times intricate reference questions, there are certain set procedures and practices which are generally followed so that search for the query in the right direction and the information collected is acceptable to the user. इसी में हम लोग कुछ steps बना लेते हैं ताकि जो acceptable way में उसी steps के through जाकर के हम final query को solve करने तक पहुंचते हैं, ताकि हम हर direction में नहीं जाएं। आपके पास अगर 7 स्टेप्स का है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द, पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आपकी जो क्वेरी है उसे समझिए। जैसे हम क्लास नंबर लगाते हैं किसी बुक पे, हम उस टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में इसकी कौन सी जगह सही है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई क्वेरी आई है तो उस क्वेरी को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स में सर्च करें। डायलॉग विद द सीकर इन द फील्ड, जहां पर आप देखेंगे जिसने भी आपको क्वेरी दी है, जिसका भी चाहे उनको लेक्चर देना है या चाहे पेपर लिखना है या जो भी है, आपको 1-to-1 उनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि यू मस्ट नो कि वो कहां यूज कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को। और किस पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जो एक इनफॉर्मल कह सकते हैं उसे रेफरेंस इंटरव्यू भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रेफरेंस इंटरव्यू क्या है, रेफरेंस इंटरव्यू यही होता है अगर जिस जहां से आपको क्वेरी आई है उस क्वेरी को क्लैरिटी लाने के लिए, उसे समझने के लिए हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो हम अपना क्लैरिटी के लिए उस क्वेरी को थॉरली समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस पीरियड के लिए चाहिए और किस जगह के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, यूजर की बैकग्राउंड क्या है। अगर एक स्कूल टीचर मांग रहा है तो उसको स्कूल के लेवल का चाहिए, अगर एक रिसर्च स्कॉलर मांग रहा है तो उसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज में जब हम काम कर रहे होते हैं। A reader specializing in sociology and is involved in special study of children's literature wanted to know if there is an analogy of Cinderella myth in Indian children's literature. अगर कोई सोशियोलॉजी पे काम करे, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको आप ही के चैप्टर में, कि वो ये जानना चाहता है कि सिंड्रेला एक स्टोरी है जो आपको हिंदी में नहीं है, वो अंग्रेजी कहानी है, तो वो कहते हैं कि इंडियन लिटरेचर में भी ऐसी कोई सिंड्रेला की कहानी मिल सकती है जो जिस तरह से ये है, तो वो हम कैसे करेंगे। हमें ये डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है कि अब अगर ये भी नहीं पता होगा हमें सिंड्रेला क्या है और किस तरह से हमें सबसे पहले पता चलेगा कि ये चिल्ड्रन लिटरेचर में मिलेगा हमें, सिंड्रेला की जो कहानियां हैं बच्चों की कहानियां हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे हमें, मैं जो काम कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में मेरी एम्फेसिस है बच्चों के ऊपर, मैं बच्चों के लिटरेचर पे काम कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, हम एक हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हमें बच्चों के लिटरेचर पे काम करना है। उसके बाद हम एक रेफरेंस इंटरव्यू बनाएंगे, उनके साथ बात करेंगे उनसे, उसमें हम उनसे पूछेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं आप किस पे काम कर रहे हैं, तो फोक लिटरेचर पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सेम इंडियन उसमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट हेडिंग को ढूंढने से लाइब्रेरी कैटलॉग में जाएंगे, फोक टेल्स में चले जाएंगे, फोक टेल्स में पता चलेगा हमें कि जो यहाँ की इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरीज जो है वो फोक टेल्स में डाली हुई है। तो कैटलॉग में हम जो सब्जेक्ट हेडिंग होती है, एक स्ट्रांग सब्जेक्ट हेडिंग होती है, वो सभी की एक बन जाती है एक तरह की बुक्स की। तो उसमें से हम फोक टेल्स जब देखेंगे तो फोक टेल्स में आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर हमें इस तरह की बुक मिल सकती है। तो वहां पर हमने देखा द बुक इज लोकेटेड इन द लाइब्रेरी एंड कंसल्टेड, दिस इज एग्जैक्टली एनालॉगस स्टोरी ऑफ सिंड्रेला इन द स्टोरी ऑफ सुदेवी भाई डिस्क्राइबिंग हर इनिशियल सफरिंग्स फॉलोड बाय हर गुड फॉर्चून। तो हमने जब फोक टेल्स में गए हमने वहां देखा चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या था, जब हमने उसे थॉरोली किताब तक पहुंचे, किताब को निकाला देखा, वहां हमें एक स्टोरी मिल जाती है जो कि बिल्कुल सेम लग रही है हमें सिंड्रेला जैसी, वो है सुदेव भाई की एक स्टोरी है जिसका कि बचपन बहुत बुरी तरह से बहुत बुरा था, मगर बड़े होते में उसका जो फॉर्चून उसकी जो किस्मत है बहुत बदल जाती है। जिस तरह सिंड्रेला में भी यही है स्टोरी में कि उसको राजकुमार मिल जाता है या जो भी व्हाटएवर, इस तरह से ये स्टोरी मिल जाती है। तो पर हमें यहां पर स्टोरी पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें देना है ध्यान कि लाइब्रेरियन को ये ध्यान देना कि हम इसकी सर्चिंग कैसे करेंगे, हम इसके इक्विवेलेंट सिंड्रेला के इक्विवेलेंट उन्हें कैसे इंडियन स्टोरी ला कर देंगे। तो वो हम फोक टेल्स में जाएंगे, फोक टेल्स को ढूंढेंगे देखेंगे, और वहां अगर हमारे पास कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं शॉर्ट स्टोरीज होती है तो उसको देखेंगे हम कि शॉर्ट में किसकी स्टोरी जो है जो सिंड्रेला जैसी मिलती है। तो इस तरह से हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज प्रमोट द यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, कनेक्ट द यूजर्स विद देयर अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी दैट मीट द इन्फॉर्मेशन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों सर्विसेज से हैं, जो शॉर्ट या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज से क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट और आपका जो यूजर है वो आपस में मिलते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है उन दोनों का, बीच में यू आर द मिडिल पर्सन हु इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। आपकी जो यूजेज है लाइब्रेरी का वो भी बढ़ जाता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स जो है यूजर्स की वो भी इनडेप्थ उनको नॉलेज मिल जाती है, इनडेप्थ उनको चीजें मिल जाती है और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे लिटरेचर सर्च में, लिटरेचर सर्च में हम क्या करते हैं। लिटरेचर सर्च इज द सिस्टमैटिक सर्च फॉर पब्लिश्ड मटेरियल ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक. जैसे हम एक कैटलॉग बनाते हैं, कैटलॉग में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट की किताबें हैं तो एक सब्जेक्ट की किताबें क्लास नंबर तो एक ही जैसा आ जाएगा सभी पे, और मगर ऑथर से हम अल्फाबेटिकली उनको लगाएंगे ए फिर बी फिर सी. इसी तरह हम लिटरेचर सर्च में क्या करते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड मटेरियल है उसी पब्लिश्ड मटेरियल को व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट एक पर्टिकुलर टॉपिक मिला हमें इस सर्विस से कंसर्न्ड, हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे, देखेंगे इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट कहाँ मिल रहे हैं. एक टॉपिक मिला है इससे रिलेटेड हमें सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज डॉक्यूमेंट्स. सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया. सपोज हमारे पास एक क्वेरी है, जो एग्जाम्पल है, क्वेरी मिली है हमें, मुझे एक पेपर लिखना है ऑन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेज. डिफरेंट ब्रीड्स मतलब अलग अलग तरह के घोड़े की कितनी वेराइटी है उस पे मुझे कुछ लिखना है. अब मुझसे जो ये सवाल पूछा गया एज अ लाइब्रेरियन, मुझे बोला गया कि कहां से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे इस पे कुछ बनाना है, पेपर लिखना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, या मुझे कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट करना है, रिपब्लिक में क्या होता है और डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करनी है. ये सारी ही एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. या मेरे पास एक क्वेरी आई है स्पेसिफिक सर्चेस के लिए, यू नीड टू सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन दीज डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस, या गवर्नमेंट ये जो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट की है, इस तरह के अलग अलग क्वेरीज आई है मेरे पास. तो एक स्पेसिफिक सर्चर है, उससे हम इंटरव्यू कर लेते हैं, उससे बात करने के बाद हम लोग व्हाट वी ट्राई टू डू टू दोज क्वेरीज, वील फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स हम यूजर तक ले जाएंगे और इस सर्विस को लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में लेते हैं. वेल इन द रेफरेंस रेडी रेफरेंस सर्विस शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस द आंसर इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डाटा और फैक्ट्स. शॉर्ट रेंज में क्या होता है, आपने मुझसे कोई चीज मांगी, अगर आपने पूछा कितनी वेराइटी के हॉर्सेस होते हैं, तो मेरे पास ये शॉर्ट रेंज में हो जाएगा. मैं ढूंढूंगी, देखूंगी, मैक्सिमम मुझे पता है ऑथेंटिसिटी के साथ ढूंढूंगी, मैं बताऊंगी 20 वेराइटी होते हैं हॉर्सेस के. तो मेरा क्या हो गया, क्वेरी जो हो गई डाटा के फॉर्म में आपके पास आ गई, एक फैक्ट हो गया जो मैंने आपको बता दी. ये शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज के लिए है. और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज में क्या होता है, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन. क्योंकि इसमें मुझे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर उन्हें कंपाइल करना पड़ेगा, तो इसलिए पेपर ज्यादा हो जाएगा इसमें है. टू मीट द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ रिसर्चर्स साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट सोशल साइंटिस्ट एट टाइम्स एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्चेस आर कैरीड आउट बाय सेवरल सोर्सेज, बुक्स पीरियोडिकल्स नॉन बुक मटीरियल एंड समटाइम्स इनफॉर्मल सोर्सेज आर ऑल्सो कंसल्टेड. दस द लिटरेचर सर्च इन दिस केस आर मोर एग्जॉस्टिव बोथ इन डेप्थ एंड द रेंज. कंप्लीट दिस एग्जॉस्टिव सर्च इट मे टेक several weeks, eventually it may take sometimes lead to second step, namely compilation of the bibliography on the subject. इसके बाद जो स्टेप है वो है कंपाइलेशन का. लिटरेचर सर्च में कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें न्यूज़पेपर से लेकर किताब मैगजीन जर्नल जो भी मिलता है हमें उस टॉपिक से रिलेटेड, हम उस टॉपिक को अलग करते जाते हैं तो फिर उसे एक कंपाइलेशन तक के स्टेज तक पहुंचाते हैं कि ये इतने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, इन्हें हम इसमें यूज कर सकते हैं लिटरेचर सर्च में. तो कंपाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलेशन में वील डू सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज आर कंपाइल्ड बाय लाइब्रेरीज ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर सब्जेक्ट. समटाइम्स बिब्लियोग्राफीज आर कंपाइल्ड ऑन द रेगुलर बेसिस इन एंटिसिपेशन फॉर द यूजर नीड्स. कभी कभी क्या होता है, मैंने जो क्वेरी दी उसके हिसाब से हमने लिटरेचर सर्च किया, फिर उन्हें हमने कंपाइल किया और हमने आपको दे दिया. कभी कभी इन एंटिसिपेशन, मुझे मालूम है ये टॉपिक है, हो सकता है जैसे आजकल जो है हम करिकुलम पे बात कर रहे हैं, तो मेरे को जो करिकुलम से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, एनसीएफ पे बात हो रही है, सभी लोग एनसीएफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, हर जगह उस पर डिस्कशंस होते हैं, तो लाइब्रेरी में ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया. मैंने सब जगह तरह से क्लिपिंग्स कटिंग्स न्यूज़पेपर्स में से जर्नल्स में से आर्टिकल्स को हर चीज को कंपाइल करके रख दिया, एक जगह पे एक फोल्डर बनाया है, है उसमें मैं सभी कुछ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डालती रहती हूँ। फिर इसे जब हम कंपाइल करते हैं फिर उसे हम अरेंज कर लेते हैं। एट टाइम्स बिब्लियोग्राफीज आर कंपाइल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज ड्यूरिंग सेमिनार्स वर्कशॉप्स एंड पार्टिसिपेंट्स विद द लेटेस्ट लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट। कभी कभी मोस्टली ये सब जो एंटिसिपेशन में जरूरत हमें पड़ती है वो हमें जब वर्कशॉप्स या सेमिनार्स कंडक्ट करने होते तब हमारे पार्टिसिपेंट्स को जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल लाइब्रेरीज ऑफर दीज सर्विसेज मोर फ्रीक्वेंटली देन द पब्लिक लाइब्रेरीज। जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वो एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं और हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो वहां पर इन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और इस सर्च की बहुत वैल्यू है। स्पेशल लाइब्रेरीज भी इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज में का इतना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे लिटरेचर सर्च की बात की, फिर हमने कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी की बात करी, तो उसमें जो स्टेप्स हैं जो हमें बिब्लियोग्राफी में कंपाइल करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम पहले क्या करेंगे, सर्च प्रोसेस मैनुअल। फॉर लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। मैनुअल सर्च प्रिंटेड सोर्सेज आर कंसल्टेड व्हाइल इन द कंप्यूटर बेस्ड सर्च कंप्यूटराइजेशन डेटाबेसिस आर ऑल्सो यूज। सबसे पहले हम मैन्युअली जो भी किताबें हमारे पास हैं जर्नल्स हैं मैगजीन्स हैं उन्हें देखते हैं और अगर हमारे पास डेटाबेस में कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड है तो हम अपने उसमें भी देख लेते हैं। फिर जो स्टेप वन है वो है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, देन टेकिंग अ डिसीजन ऑन द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द पीरियड। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट जो है पहले है अंडरस्टैंडिंग, आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका पीरियड क्या है, कौन से पीरियड के बारे में आप बात कर रहे हैं और कहां से कहां तक का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजी, तो हम किस तरह से सर्च करेंगे, कहां से करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज से करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेज से करेंगे, फिर हम जहां से भी जो मिलता है हमें उसकी हम एंट्रीज बनाएंगे। लाइक मैं अभी बात कर रही थी बता रही थी आपको कि अभी हम अगर करिकुलम पे बात कर रहे हैं तो अगर हम उससे रिलेटेड बात करेंगे, अब हमारा एनसीएफ बन रहा है 2020 तो हम उसमें कैसे करेंगे प्रिपरेशन करेंगे एंट्रीज की, अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज करेंगे, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम इसी का इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स बन गया आपको मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया ये सब, जहां से भी आपने डॉक्यूमेंट्स लिए उसको आपने सबमिट किया। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को हम थोड़ा इलैबोरेट वे में करके बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रेफरेंस लाइब्रेरियन के लिए ये वाला जो काम है और अंडरस्टैंडिंग करना हमारे अपने लिए भी। इफ वी वॉन्ट टू वर्क, और जब हम आपको काम देते हैं या कुछ सर्च करने के लिए देते हैं, क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं आपको, तब भी आप इस तरह से समझ सकते हैं उनको, यही स्टेप्स हैं आप अपने लिए भी जब आप काम करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, हम पहले सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, सब्जेक्ट का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे हम डिक्शनरी ले लें, एनसाइक्लोपीडिया ले लें, उसके बराबर के मीनिंग वाले सब्जेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे हम। कहीं कहीं जगहों पर डबल मीनिंग वाली बुक होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो हमें ये एग्जैक्टली जानना है कि ये सब्जेक्ट जो हमें मिला है इसका स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, कहां पर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा पहले। फिर टेकिंग ऑन द डिसीजन ऑन द स्कोप एंड कवरेज फॉर द पीरियड, फिर हम इस नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, विल टेक स्कोप कवरेज एंड पीरियड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। हम उस पीरियड का देखेंगे, अगर हमें 5 साल या 1 साल का किसी ने मांगा है तो हम डॉक्यूमेंट्स वही निकालेंगे, इस साल के बीच में क्या क्या हुआ है, 12 से 13 या 15 से 16 या 5 साल का दिया है, जो भी है वी हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिलेक्टिव। फिर देन वॉट वी विल डू, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कवर्ड, जो भी बुक्स आर्टिकल्स रिपोर्ट्स जैसे मैं आपको बता रही थी, और फिर एक रेफरेंस इंटरव्यू भी करेंगे हम उस पर्सन से जिससे हमारी बात चल रही होगी। क्वेरी थोरोली, रेफरेंस इंटरव्यू में हम क्या क्या पूछते हैं ये भी स्टेप्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। क्वेरी थोरोली थॉटफुली जो है वो क्वेरी को बताएं हमें, पर्पस ऑफ विच द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, बैकग्राउंड ऑफ द यूजर, स्कोप एंड टाइप ऑफ पीरियड ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कवर्ड, व्हाट द यूजर हैज ऑलरेडी कंसल्टेड एंड टाइम फ्रेम, विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ये सब चीजें हम उसी से पूछते हैं कि आपको किस चीज के लिए चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन और कौन से पीरियड के लिए चाहिए होगी, और जो बैकग्राउंड में आपने कहाँ तक काम किया, आपने कितना ढूंढा है, वो भी आप हमें बताएंगे. सो देर वॉन्ट बी एनी डबल चेक करने के लिए हम उससे आगे काम करेंगे. फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी. इन दिस स्टेप सिस्टमैटिक प्लान फॉर कंडक्टिंग द सर्च इज फॉर्मुलेटेड. दिस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग कीवर्ड्स टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स ऑन द सब्जेक्ट. इसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स ले लेते हैं, इसी में से जैसे आपकी जो भी सब्जेक्ट आपको मिला उसी में से मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको लेके उससे हम एब्स्ट्रैक्ट में से या इंडेक्स में से सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि किस किस में ये कीवर्ड्स हमें मैच करते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अलग कर लेते हैं. सर्चिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्सेज. In this step, indexing and primary periodicals are searched to identify and retrieve the relevant items for the bibliography, and finally primary sources are consulted. फॉर द सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं हमारे, सेकेंडरी सोर्सेज हमेशा इंडेक्सिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये सेकेंडरी होते हैं. तो इनको देखने के बाद हम वहां से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हम फिर प्राइमरी पे जाते हैं. प्राइमरी आपको पता ही है जो है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सब प्राइमरी होते हैं. सेकेंडरी से हमें पता चल जाता है कि वेयर वी नीड टू गो, वॉट वी नीड टू सर्च, तो फिर हम प्राइमरी पे चले जाते हैं, वहां से हम अपनी सर्चिंग करते हैं. फिफ्थ स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज है. इन दिस स्टेप वॉट वी डू, द रेलिवेंट आइडेंटिटी डिफाइड मटेरियल जो भी है उसकी हम एंट्री बना लेते हैं, कार्ड बना लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर देते हैं. एक फॉर्मेट होता है जैसे हम एक कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, उसमें ऑथर में पहले सरनेम, फिर टाइटल, मेन नेम डालते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर ईयर लिखेंगे हम, सब कुछ इसी तरह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है. उस तरह से हम इसकी एक एंट्री बनाते हैं, फिर इन्हीं एंट्रीज को हम अरेंज भी करते हैं ताकि ये जो एंट्रीज हैं ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेटिकली अरेंज, अगर बहुत ज्यादा हो तो हम इन्हें क्लासिफाइड वे में अरेंज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन की ही बहुत सारी हो या साइंस की बहुत सारे हो तो हम इनको क्लासिफाइड वे में भी करते हैं. इसके बाद हम एक इंडेक्स बना लेते हैं और सप्लाइंग ऑफ बिब्लियोग्राफी. इसके बाद बिब्लियोग्राफी आपकी तैयार हो गई, जो भी आपको टॉपिक मिला था इसको हम कभी कभी तो ऐसा हम एक सीडी रोम पे भी राइट करके ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, या हम अगर हमें हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में भी सर्च कर सकते हैं. कंप्यूटर की जो बेस्ड है सर्चिंग है उसके लिए हम क्या करते हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेब बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द टास्क ऑफ ऑनलाइन सर्चिंग हैज बिकम क्वाइट इजी. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ई डेटाबेस प्रोड्यूसर्स एंड सीडी रोम प्रोड्यूसर्स ऑफर अ फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल वेयर अ नोविस यूजर कैन, एक नया यूजर भी जो है कैन यूज एंड सर्च द डेटाबेस स्टेप बाय स्टेप एंड रिट्रीव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. To conduct effective and efficient searches, one has to familiarize oneself with various searches and several options available with specific electronic databases before searching. In addition, there are some steps which are for conducting the computer-based searching. Isme bhi kuch steps hain jo hum computer-based पे बैठ के जो डेटाबेसेस होते हैं उनको सर्च करने के लिए कैसे करते हैं. जो भी यूजुअली जो पब्लिशर्स हैं डेटाबेस देते हैं हमें, अगर पहले तो हमें सीडी रोम के में देते हैं, अब तो क्लाउड पे होता है या उनके सर्वर्स पे होता है, पर उसकी भी वो लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं इसमें क्या स्टेप्स है, किस तरह से आप इसे ढूंढ सकते हैं यहां पर. तो वो स्टेप्स में है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, जैसे हमने उसमें किया, फिजिकल कॉपी में भी यही किया हमने कि एक पहले सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया, फिर टेकिंग अ डिसीजन ऑन द स्कोप कवरेज एंड पीरियड. स्कोप क्या है, कहां यूज होने वाला है, कवरेज कहां से कहां तक का चाहिए हमें, और पीरियड क्या लेना है. गेटिंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना है. लॉगिंग ऑन टू सर्च सर्विस प्रोवाइडर, कौन आपका प्रोवाइडर है उस पे लॉग इन कर लेते हैं हम, कौन सा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन हो जाएगा. फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च एक्सप्रेशन, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्ड्स, आपको किस तरह से डिस्प्ले चाहिए. जैसे हमने वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैटलॉग कार्ड की तरह फॉर्मेट कर लिया, यहां पर भी आप एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए आपकी जो सर्च क्वेरी के रिजल्ट हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च एक्सप्रेशन इफ रिक्वायर्ड, सिलेक्टिंग द मोड ऑफ डिलीवरी, फिर आप किस तरह से डिलीवरी करते हैं, जो आपका सारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कंपाइल हो गई, एक जगह पे आ गई, फिर आप इसे कैसे भेज सकते हैं? मेल के थ्रू भेज रहे हैं या सीडी रोम राइट करके भेज रहे हैं या जैसे भी आप उसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू डू इट. गेटिंग कनेक्टेड टू द, अब इसके जो स्टेप्स हैं वही हम शॉर्ट में आपको बता देंगे. फॉर ऑनलाइन डेटा बेसिस द इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड. इन एडिशन टू इंटरनेट कनेक्शन वन नीड्स टू रजिस्टर विद ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हु प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू द डेटा बेस फॉर सर्चिंग. जैसे हम एनआईएस का डेटा बेस एक फ्री है, ओपन है, तो यू कैन यूज इट इस तरह से. मगर पब्लिशर्स के डेटाबेसेस ऐसे नहीं होते, यू हैव टू पे फॉर देम. आपको उसके परमिशन लेना पड़ता है पहले उस पे वेंडर्स, तो यू नीड टू टॉक टू देम एंड पे देम, देन ओनली यू कैन गो टू देयर. एमराल्ड और एनी अदर services who Emerald or any other publisher providing access to number of databases from different publishers or the publishers providing online databases in its own database like H.W. Wilson and Company and Chemical Abstract Services. ये free के databases हैं जिनके जिनमें आप search कर सकते हैं. Logging on to तो सर्च सर्विस प्रोवाइडर्स, आप कैसे लॉग इन करेंगे? वो आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप लॉग इन कर सकते हैं, जिसमें आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, वहां से जाकर के आप उसको एक्सेस कर पाएंगे. एमराल्ड का सपोज हमारे पास है www.emeraldinsight.com. उन्होंने आपको अपना ये वेबसाइट दे दिया है, आपको एक्सेस करने के लिए एक आईडी वो दे देंगे, एक पासवर्ड होगा जहां से आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सेस. जैसे आप किसी जर्नल के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं और हार्ड कॉपी की भी करते हैं, तो ऑनलाइन में जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है उसमें वो हमेशा खुल जाती है. इसी तरह से आपको जहां से आईडी पासवर्ड हो गया तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे, उस डेटाबेस तक पहुंच जाएंगे. सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट डेटाबेस, इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, किस बेस पे करेंगे. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि अगर आपको सोशल साइंसेज के डेटाबेस चाहिए तो आप कोशिश करेंगे सेज में चले जाए, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड तो रॉटलेज में, इसी तरह साइंस से रिलेटेड चाहिए तो आप स्प्रिंजर में जाएंगे. तो बहुत सारे हैं, साइंस डाइजेस्ट है. इस तरह से डेटाबेस को सिलेक्ट करना भी एक जरूरी काम है आपकी नीड के अकॉर्डिंगली. फॉर्मुलेटिंग द सर्च एक्सप्रेशन, दिस रिक्वायर्स सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टर्म्स और फ्रेजेस फॉर सर्चिंग द डेटाबेस. डेटाबेस में सर्च करना भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि आपको जो कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं डेटाबेस में, फ्रेजेस होने चाहिए आपको, जिस टर्म को वो पिक कर ले, चूज कर ले और आपके डेटाबेस में उसको वो सर्च कर ले, वो इम्पोर्टेंट है. मेनी डेटाबेस है देयर स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, वो कई डेटाबेसेस का है, उन्होंने अपनी स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी बनाई हुई है, उसकी लिस्ट होती है जो कि वो कीवर्ड्स में आपको सप्लाई कर देते हैं कि इन कीवर्ड्स से हमारा डेटाबेस आराम से आपको सर्च करने में आसान हो जाएगा. डेटाबेस बहुत सारे होते हैं पर कईयों की सर्चिंग बहुत आसान हो जाती, कोई भी वर्ड डाल दो वो यूज कर लेगा, और कई डेटाबेस में ऐसा होता है सेम वर्ड डालोगे आप वो ढूंढ नहीं पाएगा सेम चीज को जो होगी भी उनके पास. मगर अगर अब आपने उसको ऑथर में डाला नहीं मिला, टाइटल में डाला नहीं मिला और एनी सर्च में डाल दिया जिसमें बहुत सारी तरह की हर मिक्स सर्च हो जाती, हो सकता है उसमें मिल जाता है, तो इस तरह से आपको इसमें ढूंढने की और देखने की और कीवर्ड्स पे ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है. और सेवन्थ स्टेप जो है इसका है सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डिस्प्ले, किस फॉर्मेट में आप किस तरह से आप रिकॉर्ड को चाहते हैं आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए. आप ऑथर चाहते हैं पहले, टाइटल चाहते हैं, या किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज ऑन अप टू यू. आप किस तरह से चाहेंगे आपके यूजर तक इस फॉर्मेट में मैं पहुंचाना. रीफॉर्मुलेटिंग द सर्च एक्सप्रेशन, कभी कभी ऐसा हो जाता है इतना सब कुछ करने के बाद जो है सर्चिंग आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती और रिट्रीव नहीं हो पाता है डॉक्यूमेंट, तब आप क्या करते हैं, आप इसी फॉर्मुलेशन को, इसी एक्सप्रेशन जो आपको मिला है टाइटल, इसी को आप रीफॉर्मुलेट करते हैं, किसी और दूसरे तरीके से सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको जो है एक तरीके से इससे नहीं मिला तो दूसरे तरीके से हो सकता है, जैसे सिनोनियम्स जिन्हें कहते हैं, कीवर्ड्स बदल देते हैं, टाइटल को दूसरे तरीके से यूज करके देखते हैं. इस तरह से हम आपको सेकेंड एक्सप्रेशन में भी ढूंढ के देखते हैं ताकि हमारे पास जो है बेस्ट वो मिल जाए, तो इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, यही आपका यूज हो सकता है. ये है लिटरेचर सर्च के स्टेप्स, और ये स्टेप्स याद रखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ई डेटाबेस में कैसे बनाते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे कंपाइल करते हैं, या हम हार्ड कॉपी कैसे बनाते हैं। ये जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा, ये सर्विसेज के बारे में हम बात करें, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज में क्या क्या आता है। थैंक यू।